मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 4 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुधार सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से, चामेलू राम कवर्धा छत्तीसगढ़ से, विकास रंजन हजारीबाग झारखंड से, कमलेश सुतारकर शिवपुरी मध्य प्रदेश से, रोशनी साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, सचिन इनवाती छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, नीतीश श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से, विकास दीप हल्द्वानी उत्तराखंड से और राज लक्ष्मी कुमारी बेगूसराय बिहार से। तो सुधार, चामेलू, विकास, कमलेश, रोशनी, सचिन, नीतीश, विकास और राजलक्ष्मी, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बात जो आप लोगों के ईमेल से जुड़ी हुई बात है, पिछले काफी समय का मतलब समझ लीजिए कि सालों से लगातार हम लोगों के पास इस बात को लेकर के बहुत मेल आते रहते थे कि सर, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। लगातार बहुत से मेल आते थे कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। कोशिश होती थी कि मैं उन्हें हमारा ऑफिस उन्हें ईमेल के जरिए सूचित करे, और यहां तक कि जो हमारी क्लासेज लगती हैं उसमें भी उनको सजेस्ट किया जाता था कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे लेंगे। बाद में फिर एकेडमी ने फैसला किया कि नहीं, इसके लिए बेहतर होगा कि एक प्रोग्राम बनाया जाए और ताकि इससे उनको भी फायदा हो सके जो हमसे सीधे सीधे नहीं पूछ पा रहे हैं या सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। तो मित्रों, उसी को ध्यान में रखकर एक प्रोग्राम YouTube पर डाला गया है ऑप्शनल पेपर के चयन को लेकर कि आप ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करेंगे, चयन कैसे करेंगे। ये YouTube पर प्रोग्राम 2-3 दिन पहले ही डाला गया है और ये सूचना आप सबके लिए है कि अगर आप लोगों को उस विषय के चयन को ले ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन को लेकर के कोई दिक्कत हो रही है, आप उसके सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, पैरामीटर्स को जानना चाहते हैं कि हमें कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, तो आप उस YouTube के प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों, जहां तक आज के मुख्य विषय का सवाल है, आज मैं आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर बात करूंगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको आप कह लीजिए मंत्री परिषद, है ना, मैं इस अलग एंगल से आपसे बात करूंगा। आप ये ना सोचे कि अरे इस पर क्या सर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो किताबों में मिल ही जाएगा और वास्तव में किताब में मिल जाएगा, लेकिन मैं जो बातें करूंगा शायद वो किताबों में न मिले और जो आपके लिए जरूरी भी है। तो दोस्तों, आइए इससे पहले कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद के बारे में बातें करें, थोड़ी सी दूसरी खबरें देख लेते हैं। अपने न्यूज में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंच गए हैं, राइट। ये 9वां सम्मेलन ब्रिक्स का है। इस बार जो ब्रिक्स का जो विषय रखा गया है वो है बेहतर भविष्य के लिए सुदृढ़ साझेदारी। ये भी आपने न्यूज में ही सुना है, है ना, मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन होता क्या है कि जब हम न्यूज सुनते हैं तो जो क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसे हम मिस कर जाते हैं। देखिए, आप 15 मिनट की न्यूज सुन रहे हैं, आप टीवी पर 1 घंटे, दूरदर्शन पर 1 घंटे की न्यूज सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो हमेशा आपको चाहिए ये कि उस न्यूज में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं पहले तो आप उनको रिकॉल करें, मतलब सुनने के बाद उन्हें अपने दिमाग में लाएं। अच्छा, आज के न्यूज में मेरे लिए ये काम की बातें थी। और इसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर न्यूज को चुन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या बदलाव किए गए हैं, उसमें परिवर्तन किए गए हैं, ये आपने सुन लिए, तो फिर आप उसमें से छांटे कि इनमें से मुझे कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी है, है ना, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो आपने ब्रिक्स के बारे में सुना, इसके बाद आपको उसका शीर्षक मालूम होना चाहिए, मतलब शीर्षक क्या, विषय क्या है। इस बार का विषय है बेहतर भविष्य के लिए सुदृढ़ साझेदारी। दोस्तों, मैं अभी ब्रिक्स पर आपसे कोई बात नहीं करने जा रहा हूं। आज बैठक होगी, बैठक में कुछ फैसले लिए जाएंगे, हमारे पास खबरें आ जाएंगी, आप सबके पास भी होंगी, अखबारों में भी इसके बाद आएगा, सारी खबरें आएंगी, एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, तो उन सब के आने के बाद हम इस विषय पर बात करेंगे। अदरवाइज देखिए ब्रिक्स की पृष्ठभूमि में आपको बता देता बात खत्म हो जाती फिर, लेकिन जो सम्मेलन में हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट तो सम्मेलन में जो होगा वह है, ब्रिक्स तो ठीक है एक संगठन है हमें जानना ही चाहिए, लेकिन सम्मेलन में क्या हुआ वो उसका करंट पार्ट है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ब्रिक्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे, पक्का है मुख्य विषय के तहत मैं इस पर चर्चा करूंगा, और इस पर हम तब चर्चा करेंगे जब यह सम्मेलन पूरा हो जाए और सम्मेलन के बारे में हमारे पास सारी चीजें आ जाएं, इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो एक दूसरी खबर है जो बहुत चौंकाने वाली खबर है, और वो है उत्तर कोरिया की। देखा आपने कि जो उत्तरी कोरिया है उसने कल हाइड्रोजन बम का विस्फोट परीक्षण किया है, हाइड्रोजन बम। नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बम, और जब ये बम इसका जब परीक्षण किया गया तो धरती हिली और आसपास के क्षेत्रों में 6.3 का भूकंप भी आया। ये भूकंप काफी तीव्र गति का भूकंप माना जाता है, 7 आने पर तो आपको मालूम है कि तहस नहस हो जाती है चीजें, 6.3। और ये माना जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन बम है, मतलब उत्तरी कोरिया के पास इस तरह के बम हैं, परमाणु बम आदि शक्ति उसने प्राप्त कर ली है कि वो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है चौंकाने वाली वो ये कि इस हाइड्रोजन बम को बकायदे मिसाइल्स के जरिए भेजा जा सकता है, जहां भी गिराना होगा वहां भेजा जा सकता है। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि उत्तरी कोरिया में तानाशाही शासन है और उसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच में इस बीच में काफी तनाव भी रहा है। चीन उत्तरी कोरिया का बहुत अच्छा मित्र है और लगातार चीन को अमेरिका ये कहता रहा है कि भैया उस पर दबाव डालो कि वो इस तरह के काम न करे, क्योंकि लगातार इस बीच में जो उत्तरी कोरिया है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि परमाणु परीक्षण किए जा रहा है, अमेरिका जैसे देश को धमकियां दे रहा है, लगातार उसकी ये चीजें बनी हुई है कि किसी तरह से उसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि तानाशाही दिमाग का कोई अंदाजा नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी तक तो केवल यही खबर है, कुछ देशों ने अपील की है कि सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए, उस पर दबाव डाला जाए। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या चीजें किस रूप में हमारे सामने आती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि दुनिया को अब थोड़ा सा ये लगने लगा है, दुनिया भयभीत होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तृतीय विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया हो, कहीं कुछ ऐसे कदम न उठा लिए जाएं कि पूरी दुनिया फिर से युद्ध की विभीषिका में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, ये दूसरी खबर थी। एक छोटी सी सूचना है, और सूचना अंत में यह है कि जो रेडियो पर आपने न्यूज सुना तो उसमें पब्लिक स्पीक के तहत प्राकृतिक आपदा के निपटने में जन भागीदारी, इस विषय पर प्रोग्राम आना है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे सुने। अपन साल्ट पेपर उठा करके देखिए, हमेशा प्राकृतिक आपदा पर एक प्रश्न आता ही आता है, और वो आपके सिलेबस में भी है, और आपको ध्यान होगा कि प्राकृतिक आपदा में जन भागीदारी पर मैंने आपको एक आर्टिकल भी प्रोवाइड किया है, वो इंग्लिश में है। अब मुझे ये तो ध्यान नहीं आ रहा है कि किस न्यूज़पेपर का है, लेकिन वो प्रेस क्लिपिंग्स वाले सेक्शन में अवेलेबल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जन भागीदारी, और मुझे लगता है कि इसकी संभावना ज्यादा है इस साल पूछे जाने की। तो दोस्तों, और यह ध्यान रखिएगा कि मुझे मालूम है कि आप जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर अभी मेंस में नहीं बैठेंगे, तो मैंने कह दिया ना कि इस साल पूछे जाने की, तो आप ये मत समझिएगा कि हमको तो चूंकि इस बार अक्टूबर में एग्जाम में बैठना ही नहीं है तो हमारे लिए ये टॉपिक उपयोगी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी फैसला मत कीजिएगा। वैसे भी प्राकृतिक आपदा के टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको इसे जानना ही होगा, तो अभी से तैयारी करके रखिए, पढ़ करके रखिए। राइट फ्रेंड्स, आइए अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हम लेकर चलेंगे। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो खासकर जो बहुत जरूरी है और मैंने देखा है कि जिसके बारे में स्टूडेंट बहुत भ्रमित रहते हैं। आप देखिए, जब पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम कैसे करें, तो हमने तो नाम ही दे दिया है उसको पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, गलत भी नहीं है, तो जनरली किताबें सजेस्ट कर दी जाती हैं, है ना, कि आप फलानी किताब पढ़िए, आप एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए, सबसे ज्यादा सजेस्ट की जाती है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, अपने अपने ढंग से लोग और किताबें सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है मित्रों, गलत नहीं करते वो, लेकिन मुश्किल यह है कि क्या उन किताबों को पढ़ लेने से जो पॉलिटिकल साइंस, सो कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस तो चलिए अलग हो गया, क्या उसकी तैयारी हो जाती है? क्योंकि जब आप पेपर का नाम पढ़ते हैं कि जो आपके जनरल स्टडीज मेंस का पेपर क्या का नाम क्या है, तो उसमें आपको एक शब्द मिलता है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है कि इन किताबों में मिल गया, लेकिन आपको पॉलिटी कहां मिलेगी? और मजेदार बात यह है, या ये कह लीजिए कि दुखद बात यह है, कि पॉलिटी पर एज सच इस तरह की कोई किताब नहीं है, एज सच कोई किताब नहीं है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई किताब पढ़ते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस की किताब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो समझ लेते हैं कि हमारा संविधान यह है और यह कहता है, ठीक है। लेकिन फिर ये जो संविधान में चीजें लिखी गई हैं, जो संविधान कह रहा है, उसका अनुपालन किस तरीके से हो रहा है, यानी कि उसका जो इंप्लीमेंटिंग वाला जो पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, वो क्या है, वो लागू किस तरीके से किया जा रहा है? क्या संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं ज्यों का त्यों अक्षरशः उसका पालन हो रहा है, या उसका पालन तो हो रहा है, मतलब ये नहीं कि उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन जब उसका पालन किया जा रहा है तो है वो संवैधानिक दायरे में ही, लेकिन वो ज्यों का त्यों नहीं है। अब आपको एक विचित्र बात लगेगी कि है वो संविधान के दायरे में ही, लेकिन वह ज्यों का त्यों नहीं है। और दोस्तों, यही है पॉलिटी, ये आपको समझना होगा। तो अब आपको एक प्रॉब्लम होगी कि फिर पॉलिटी की आप तैयारी कहां से करें? तो डेफिनेटली मित्रों, जो पॉलिटी की तैयारी होगी वो होगी अखबारों से, एडिटोरियल आर्टिकल्स से, एडिटोरियल कमेंट्स से, डिस्कशन से, लेक्चर्स से, यहां से आपकी तैयारी होगी। और जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मेंस में, प्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉलिटी पर ही बेस्ड होते हैं। इसीलिए इन दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लेने से कोई सिविल सर्वेंट नहीं बनता है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़े से दोनों एंगल से बात करने की कोशिश करते हैं, जितना भी वक्त हमारे पास है। अब आप देखें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लेकर के हमारे संविधान में दो अनुच्छेद हैं, एक है 74, एक है 75, ये आपको याद होने चाहिए, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। जो अनुच्छेद 74 है वो सीधे सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और जो उसके ठीक बाद का जो अनुच्छेद 75 है वो है मंत्रियों की नियुक्ति और उनका टेन्योर कितना रहेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सबको लेकर के अनुच्छेद 75 है, राइट। अब आप देखिए कि है क्या इतना बड़ा मतलब मंत्रिपरिषद, यू कह लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, मतलब डेमोक्रेसी की आप कह लीजिए कि गंगोत्री जैसे है वो, हालांकि ठीक है डेमोक्रेसी की गंगोत्री हम चुनाव को मानते हैं, सरकार की गंगोत्री है आप कह लीजिए, चलिए डेमोक्रेसी न कहें, सरकार की गंगोत्री, प्रशासन की गंगोत्री है, कार्यपालिका की गंगोत्री है मंत्रिपरिषद। अब देखिए कि 74 में यह कहा गया सीधे सीधे कि जो राष्ट्रपति हैं उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार काम करेगा, बस ये कहा गया है, ठीक है। उसके आगे दूसरे प्रोविजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सरकार तो राष्ट्रपति की होती है संवैधानिक रूप से, और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जो प्रधानमंत्री होगा वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, और राष्ट्रपति फिर इसकी सलाह से काम करेगा, अनुच्छेद 74। फिर जब हम अनुच्छेद 75 पर आते हैं, जिसकी मैं अभी यहां स्पेशली चर्चा करूंगा थोड़ी सी, वो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं, अब ये भी उनके हाथ में नहीं है। देखिए अब आप जब इसको पॉलिटी में देखेंगे तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, है ना। इसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री फिर बताएंगे कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य होंगे, ये संवैधानिक प्रावधान है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अब आप थोड़ा सा पॉलिटी को समझिए, मैं मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं, और पॉलिटी को समझने के लिए आज के अखबारों पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। मंत्रिपरिषद में बदलाव हो गया, आज के अखबार देखिए कि वो उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को बता रहे हैं कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसके बाद है कि किन किन क्षेत्रों से कितने कितने मंत्री हैं, दूसरा 2019 में जो चुनाव होने हैं उनको ध्यान में रख करके किस तरह से मंत्रिपरिषद में परिवर्तन किया गया है, उसका कंपोजिशन क्या हो गया है, यानी कि उसमें नौकरशाह कितने हो गए हैं, ये सारी चीजें आप आज के अखबार में पढ़ रहे हैं ना, आज के अखबार में ये चीजें आपको पढ़ने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों मेरा एक ही सवाल है यहां, और वो ये है कि देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, मतलब राष्ट्रपति करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो ऐसा लगता है सुनने पर कि जो मंत्रिपरिषद है उस तो मंत्रियों के चुनाव के दृष्टि से या किसे वो मंत्री बनाएंगे पूरी तरह से प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस बारे में प्रधानमंत्री तानाशाह है, क्यों जिसको चाहे मंत्री बनाए, जिसको चाहे मंत्री न बनाए, जिसको भी चाहे वो मंत्री बनाए, यहां तक कि वो तो बाहर से भी लाकर के मंत्री बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, बाहर से भी ला करके बना सकते हैं। 6 महीने में जरूर है कि उनको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे किसी भी सदन के सदस्य बनेंगे। तो अब जब आप इन बातों पर गौर फरमाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि अखबारों में क्या लिखा देखिए, तो आपको साफ दिखाई देगा कि ठीक है ये तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा पर निर्भर कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छाएं भी दूसरी बहुत सी स्थितियों परिस्थितियों और आवश्यकताओं से नियंत्रित होती है, नियंत्रित होती है जब वो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अब आप देखिए कि पॉलिटी आ गई, नियंत्रित होती है तो पॉलिटी आ गई, उनको ये देखना पड़ता है कि पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व मिले, उनको ये देखना पड़ता है कि सभी कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व मिले, उनको महिला पुरुष शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन सब के बीच भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तो कितनी सारी चीजों के बीच में उनको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। फिर अगर सरकार में दूसरे दल भी शामिल हैं तो दूसरे दल के भी सदस्यों को किसको लें, कितने उनको पद दें, कौन कौन सा उनको पोर्टफोलियो दें। अब आप देख रहे हैं कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जब अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, व्यवहार में लाया जा रहा है, तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर नहीं रह गया, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर है। दोस्तों इसे कहते हैं हम पॉलिटी, और आपको जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के लिए इस पॉलिटी को जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए मित्रों मैं खासकर पॉलिटी वाले जो टॉपिक्स होते हैं आपने देखा होगा कि मुख्य विषय के रूप में ज्यादा लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंस डेवलप करना स्टूडेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए इस सेंस को डेवलप करने के लिए सच पूछिए कोई सेपरेट बुक भी नहीं है जिसके आधार पर आप इसको डेवलप कर सके। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में अब और जो कुछ बातें होंगी अगर वक्त मिला तो फिर हम आगे कभी देखेंगे, फिलहाल बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, बहुत थोड़ी क्लिपिंग्स हैं, मैंने पिछले सप्ताह आप लोगों को ढेर सारी क्लिपिंग्स देकर के काफी परेशान किया है, लेकिन मैं क्या करूं, घटनाएं ही कुछ इस तरह से घटित हो रही थी कि खूब उस पर लिखा जा रहा था तो क्लिपिंग्स ज्यादा हो रही थी। आज की क्लिपिंग्स की संख्या देख करके आप जरूर राहत की सांस लेंगे। तो मित्रों अब मैं ईमेल पर आता हूं, और सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: धर्मेंद्र कुमार जैसलमेर राजस्थान से, राकेश कुमार गौड़ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, ऐश्वर्य रणदिवे बलवीर कुमार पटना बिहार से, मनीष सिंह भदौरिया भिंड मध्य प्रदेश से, विकास कन्नौजिया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, सागर प्रजापति रामगढ़ झारखंड से, चीकू सिंह पंकज कुमार निखिल आनंद और ज्योति उपाध्याय, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।